ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हम आज स्वागत करना चाहेंगे आज के इस बहुत ही सुंदर और पावन पुष्प अभिषेक महोत्सव में। श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद में मैत्रेय मुनि महात्मा विदुर को एक बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं, सोहम दृणाम क्षुल्ल सुखाय दुखानाम। वो कहते हैं कि इस भौतिक संसार में एक व्यक्ति माया के अधीन क्षुल्ल सुख, इस भौतिक संसार का जो सुख है जिसको मैत्रेय मुनि क्षुल्ल सुख कह रहे हैं। क्षुल्ल का अर्थ होता है बहुत ही कम मात्रा में, क्षुद्र। तो ये जो माया का सुख है जिसे क्षुल्ल सुख कहा गया है, तुच्छ नगण्य, इस नगण्य तुच्छ सुख को प्राप्त करने के लिए मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जो प्रयास करना पड़ता है इस तुच्छ सुख को प्राप्त करने के लिए, वो प्रयास तुच्छ नहीं रहता। कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि यदि इस भौतिक संसार का सुख वो तुच्छ है तो उस तुच्छ सुख को प्राप्त करने के लिए मेरा जो प्रयास होगा वो भी तुच्छ होगा। परंतु मैत्रेय मुनि कहते हैं महत् कर्म, कि उस तुच्छ सुख को प्राप्त करने के लिए जो कर्म करना पड़ता है, जो अथक प्रयास करने पड़ते हैं, वो बहुत महान महद होते हैं। तो प्रयास इतना करना पड़ता है और सुख मिलता है क्षुल्ल सुख, तुच्छ सुख मिलता है। और इसके विपरीत आध्यात्मिक पथ में हमें सुख इतना मिलता है परंतु प्रयास करना पड़ता है केवल तुच्छ प्रयास भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान का यह सुंदर पुष्प अभिषेक शुरू होने से पहले मैंने सोचा हम आज इन दो पहलुओं पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि इस भौतिक संसार का जो सुख जो कि तुच्छ है उसे प्राप्त करने के लिए कितना महद प्रयास करना पड़ता है, और जो आध्यात्मिक सुख जो कि इतना महान है, जो कि चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षा में कहते हैं प्रतिपदम पूर्ण अमृत अस्वादनम, पूर्ण अमृत जो हमें पूर्ण अमृत का अनुभव दे, और प्रतिपदम हर पग में इस आध्यात्मिक पद के। और इसके लिए क्या करना है, केवल एक तुच्छ प्रयास हमें करना है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, भगवान कहते हैं गीता में। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैत्रेय मुनि का कथन श्रीमद् भागवत में, जो कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार का जो सुख है वो क्षुल्ल सुख है। हमारे एक आचार्य हुए हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, गोविंद दास, और उन्होंने अपने एक सुंदर भजन में कहा है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे, कि हे मन, भगवान श्री नंद नंदन के चरण अरविंद को भजन करो उसका। और वो कारण दे रहे हैं कि क्यों भजन करना चाहिए। तो कहते हैं, जीवन टलमल कमल दल जल। कि इस भौतिक संसार में हमारा जो जीवन है, जैसे एक कमल का दल होता है, पत्ता होता है, उसके अंदर उसके ऊपर यदि कोई जल की बूंदें छिड़काए तो वो कितने समय तक उस कमल के पत्ते के ऊपर टिकती है वो बूंदें? कुछ समय तक, और वो फिसल कर वो बूंदें फिर से पानी में गिर जाती हैं। तो उसी प्रकार से इस मनुष्य जीवन में या इस भौतिक संसार में हमारा जो जीवन है, हमारी जो आयु है, वो कमल के पत्ते के ऊपर जो बूंदें टिकती हैं क्षणभंगुर, केवल उतने ही समय के लिए है। और उसमें जो हम सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वो इतना अथक प्रयास है, और जो सुख मिलता है वो सुख क्षुल्ल सुख। इसीलिए शास्त्रों में जो व्यक्ति केवल इस भौतिक इंद्रिय भोग के पीछे लगा हुआ है उस व्यक्ति को मूढ़ कहा गया है। आप लोग जानते हैं मूढ़ किसे कहते हैं? कोई जानता है? हाँ बोलिए। मूर्ख व्यक्ति को मूढ़ कहा जाता है, और एक व्यक्ति को मूढ़ कहा जाता है। यहां वहां से आवाज सुन रहे हैं मुझे, एक गधे को भी मूढ़ कहा गया है शास्त्रों में। एक गधे को बहुत सुंदर उपमा दी गई है। गधे का दीक्षित नाम मालूम है क्या है? गधे का दीक्षित नाम है बैसाख नंदन। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा नाम दीक्षा में मिला है इस गधे को, बैसाख नंदन। परंतु गधे को बैसाख नंदन क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि वर्षा ऋतु में, अब गधा खाता क्या है? घास। तो वर्षा ऋतु में बहुत सी घास उपलब्ध रहती है, हर जगह पर घास उगती है वर्षा के कारण। तो जो गधा है वो जब घास खाता है तो इतनी सारी घास है वर्षा ऋतु में, तो जब वो खाते खाते थोड़ा आगे चलता है तो यदि एक फुट की घास उसे खत्म करनी है तो बहुत समय लगता है, क्योंकि इतनी गहरी घास है और इतनी घास है। तो एक फुट की घास खाते खाते जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे लगता है कि अरे मैंने कुछ खाया ही नहीं, एक फुट केवल मैं चला हूं। तो वर्षा ऋतु में गधा जो है एकदम सूख कर पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर समय चिंतित रहता है कि मुझे कुछ खाने नहीं मिल रहा। क्योंकि एक फुट चला है और इतना घास उसने खा लिया है, परंतु चिंता के कारण उसे लगता है कि मैं कुछ चला नहीं। उसे क्या लगता है कि जितना अधिक मैं चलकर घास खाऊं उतना अधिक घास अंदर गया है। और गर्मी के मौसम में जब घास उपलब्ध नहीं होती इतनी, यहां वहां कहीं दूर दराज घास दिखती है, तो गधा थोड़ी सी घास खाने के लिए आधा किलोमीटर जब चलकर जाता है, दूर दिखता है आधा किलोमीटर दूर घास, और जब पीछे मुड़कर देखता है कि आधा किलोमीटर मैं चला तो कितनी घास मैंने खत्म कर दी। इसलिए गर्मी के मौसम में बहुत मोटा रहता है। तो गर्मी के मौसम में उसे लगता है कि भाई हाँ अब कुछ घास खाई जैसा लगता है। तो गधे को इसलिए बैसाख नंदन कहा गया है। और भौतिकतावादी व्यक्ति जो है, जैसे बंबई में हम देखते हैं जो ये लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं, वो बहुत अपने आप में गर्व मानते हैं इसका। मैं 25 साल से ट्रेन में सफर कर रहा हूं, जानते हो, जैसे गधा इतना परिश्रम कर 1 किलोमीटर चलकर थोड़ा सा घास मिलता है तो उसे लगता है कि हां कुछ जीवन में हुआ, आज कुछ लगा कि कुछ किया जीवन में। तो वैसे ही ये भौतिकतावादी व्यक्ति सोचता है कि जब मैं इतना 25 साल से मैं इन ट्रेनों में चर्चगेट से विरार, विरार से चर्चगेट, ऊपर नीचे गधे के समान भाग रहा हूं, तब फिर लगता है कि हां जीवन में कुछ हो रहा है। ये आप हरे कृष्णा खाली बैठकर हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, कुछ हमारे तरह यहां वहां भागिए तब जाकर पता लगेगा कि जीवन में सुख क्या है। आपके प्रवचनों में बैठते हैं तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं पीना, वो नहीं खाना, यहां नहीं जाना, ये नहीं देखना, सब कुछ नहीं नहीं नहीं। जैसे एक बार दो गधे जो बहुत मैत्री थी दोनों में, लंगोटिया यार, बचपन से पले बड़े एक साथ, तो उनमें से एक जो उसको विदेश का वीजा मिल गया, एक गधे को, तो अब उसने अपने दूसरे मित्र से कहा, भाई मेरी तो लॉटरी लग गई है, तो मिलते रहेंगे अब। तो वो विदेश के एक शहर में गया एक गधा, तो अब दूसरा गधा, बहुत वर्ष बीत गए, वो थोड़ा विलाप कर रहा था कि मेरा मित्र एक चिट्ठी भी नहीं लिख रहा, कोई ईमेल नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, तो चलो मैं मिलकर आता हूं इससे। तो कैसे, तो ये गधा भी एक वीजा लेकर जाता है मिलने के लिए अपने मित्र से। तो अब ये मित्र शहर में एक शहरी गधे की तरह जी रहा है, जैसा एक व्यक्ति जब शहर में जाकर कैसे जीता है ठाट बाट में, और अब अंग्रेजी बोलता है और नए कपड़े हैं, तो इस प्रकार से ये जो शहरी गधा था इसका भी रहन सहन वैसा हो गया। तो अब ये इसके गांव का मित्र आता है इसे मिलने के लिए, तो उसे इतना उसकी स्वागत करता है, और तो ये पूछता है, भाई तुम यहां पर शहर में करते क्या हो? तो ये शहरी गधा कहता है, अरे भाई मेरा जो शेड्यूल है बहुत बिजी है यहां पर। तो वो एक धोबी के लिए काम कर रहा था, एक शहर में एक गधा धोबी के लिए काम कर रहा था। तो सुबह सुबह धोबी इसे ले जाता है, इसके ऊपर इतने कपड़े लाद कर धुलवाता है कपड़े, फिर से इसके ऊपर लाद कर यहां वहां दिन भर 9 से 5 उसका वर्किंग आवर्स, और इतना सब कठोर परिश्रम करने के पश्चात ये कहता है, पता है मुझे फिर मेरा जो मालिक है वो शहरी घास खिलाता है, शहर की घास। तो ये गधा गांव वाला ये हंसने लगता है, सोचिए गधा कैसे हंसेगा। तो ये गधा इसके ऊपर हंसने लगता है, कहता है कि तुम इतने दूर आए इतना कठोर परिश्रम करने के लिए और अंततः केवल एक घास खाने के लिए, अरे हमारे गांव में तो सब जगह घास ही घास थी, और वो भी ऑर्गेनिक, बिना फर्टिलाइजर केमिकल के। तो ये शहरी गधा अपने गांव वाले गधे को कहता है, मित्र से कहता है, तुम बिल्कुल गधे हो, तुम्हें पता नहीं कि यहां पर मेरे सामने क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, प्रगति के जो यहां पर सुविधाएं मुझे मिली हैं तुम नहीं जान सकते। तुम गांव वाले जो गधे हैं ये सब नहीं जान सकते कि प्रगति किसे कहते हैं। तो बता क्या क्या प्रगति करोगे भाई, तुम वैसे ही हो जैसे थे गांव में, वही तुम्हारे चार पैर, वही पीछे पूंछ है, ऐसा नहीं कि एक और पैर जुड़ गया है अब, और वही घास खा रहे हो। तो उसने कहा नहीं, मैं अब तुम्हें गुह्य ज्ञान बता रहा हूं, अपने कान खोलकर सुनो। ये गुह्य ज्ञान केवल तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे बचपन के मित्र हो। तो गुह्य ज्ञान क्या था, रहस्य क्या था, कि ये शहरी गधा कहता है कि पिछले ही हफ्ते मेरा जो मालिक है वो अपनी पुत्री को डांट रहा था, उसकी बेटी को डांट रहा था, और अपनी बेटी को डांटते हुए वो मालिक कहता है, तुमने फिर से अगर वो गलती की तो तुम्हारी शादी इस गधे से कर दूंगा। तो ये गांव वाला गधा पूछता है, तो उसमें क्या, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात क्या है? अरे भाई, ये मनुष्य गलतियां पे गलतियां करते हैं ये लोग, और मुझे पता है कि उसकी बेटी फिर से वो गलती करने वाली है, और उसने फिर से वो गलती की तो मेरे शादी का कार्ड तेरे पास आया। बस कुछ हफ्तों की देर है, शादी का सीजन चल रहा है, तो तू तैयारी में रहना आने की, सब परिवार। तो व्यक्ति देखिए, इस संसार में इसी प्रकार के क्षुल्ल सुख, सबसे पहले तो जो तथाकथित सुख लोग मानते हैं कि ये सुख है, वो सबसे पहले तो सुख है ही नहीं। जैसे ये गधा सोच रहा था, इतने सपने देख रहा था कि इसका विवाह हो जाएगा वो धोबी की पुत्री से, और इतना वो योजनाएं बना रहा था। उसी प्रकार से एक भौतिकतावादी व्यक्ति इस संसार में योजना बनाते रहता है कि मैं कैसे सुख प्राप्त करूंगा, कितना सुख प्राप्त करूंगा। क्षुल्ल सुख दुखानाम, और वो जो क्षुल्ल सुख है वो वास्तविक रूप में दुख का ही कारण है। जैसे भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते शुरमते बुधः। कि दुख का एकमात्र कारण है जब व्यक्ति इस भौतिक शरीर में सुख खोजने का प्रयास करता है। जैसे हमने एक बार ये उदाहरण दिया था कि इस भौतिक संसार में लोग ये कह सकते हैं कि आप कैसे कहते हैं कि सुख नहीं है यहां पर, मैं जब रोज अपना टीवी ऑन करता हूं तो मुझे इतना सुख मिलता है, रोज जब मैं अपने पसंदीदा होटल में जाकर खाता हूं तो मुझे कितना सुख मिलता है, आप कैसे कह सकते हैं सुख नहीं है। तो यहां पर भी मैत्रेय मुनि कह रहे हैं सुख है, परंतु क्षुल्ल सुख, इतना सा सुख, और उसके लिए महद कर्म। तो हमने उदाहरण दिया था कि मान लो आपको कोई व्यक्ति रसगुल्ला खिला रहा है, रसगुल्ला सभी जानते हैं, अच्छा लगता है रसगुल्ला। तो मान लो कोई आपको बड़ा वाला बंगाली रसगुल्ला वो ला कर दिया है और आप उस रसगुल्ले का आस्वादन कर रहे हैं। और जैसे ही आपने वो रसगुल्ला खत्म किया, तुरंत वो अपना बिल ला कर देता है, 1 करोड़ रुपया। इस रसगुल्ले की कीमत है 1 करोड़। या मान लो आप खा रहे हो तो एक दो उसमें से बाइट आपने लिया और साइड से आपको बिल साइड में रख दिया, उसके खाने के बाद ये बिल भर देना 1 करोड़। तो क्या आपको उसमें आस्वादन आएगा उस रसगुल्ले में जिसकी कीमत है 1 करोड़? हालांकि उस रसगुल्ले में रस भी है, गुल्ला भी है, सब कुछ है, परंतु यदि उसकी कीमत 1 करोड़ है तो कुछ यहां से नीचे नहीं उतरेगा। तो वैसे ही माया देवी संसार में क्या करती है, रसगुल्ला देती है सबको, सबको अपने अपने अनुसार रसगुल्ला मिलता है, कईयों को छोटा मिलता है, कईयों को बहुत बड़ा मिलता है, परंतु उसके साथ साथ वो बिल कितने का देती है, 1 करोड़ रुपए का। तो इसे मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, क्षुल्ल सुखाय दुखाणाम महद कर्माणाम। महद कर्म करना पड़ता है उस क्षुल्ल सुख को प्राप्त करने के लिए। और इसके विपरीत आध्यात्मिक संसार में या आध्यात्मिक पथ में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपरितम अश्नामी प्रयतात्मनः। इस सुंदर श्लोक में भगवान गीता में कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति मुझे केवल पुष्प से, जैसे आज हम भगवान को पुष्प अर्पित करने वाले हैं, और भगवान आज तो हम बहुत से पुष्प अर्पित करने वाले हैं, परंतु भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि चाहे कोई व्यक्ति मुझे एक पुष्प, भगवान पुष्पानी नहीं कह रहे, भगवान कहते हैं पुष्प, केवल एक पुष्प भी यदि कोई व्यक्ति मुझे अर्पित करे भक्ति भावना से, तो भगवान अपने आप को दे देते हैं उस व्यक्ति को। जीव गोस्वामी इस श्लोक में कह रहे हैं कि श्लोक में यदि आप देखें तो भगवान कहते हैं पत्रम, पत्रम का अर्थ है पत्ता, एक पत्ता, पत्रम पुष्पम एक पुष्प, फलम एक फल, तोयम कुछ जल। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि यहां पर भगवान इस श्लोक में, श्लोक के अंत में कहते हैं अश्नामी, अश्नामी का अर्थ है मैं खाता हूं। संस्कृत का ये जो शब्द है अश्नामी, इसका अर्थ है खाना। अब देखिए भगवान पत्ते को, जल को, जैसे बंगाल में कहते हैं जल खाबेन, तो कोई कहेगा कि हो सकता है भगवान बंगालियों को प्रसन्न करने के लिए भी कह रहे हो कि जल को भी मैं खाता हूं। और एक पत्ता, आजकल लोग पत्ते का अर्थ दूसरा जानते हैं, परंतु भगवान जब कह रहे हैं पत्रम तो तुलसी पत्र, तो भगवान तुलसी पत्र को भी खाते हैं कह रहे हैं। फलम, फल को भी खाया जाता है, परंतु यहां पर जीव गोस्वामी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि पुष्प, अब पुष्प को खाया नहीं जाता, पुष्प को सूंघा जाता है, परंतु भगवान इतने भाव विभोर हो गए इस श्लोक को कहते हुए कि भगवान इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे कि क्या चीज को सूंघना चाहिए क्या चीज को खाना चाहिए। भगवान कहते हैं पुष्प को भी मैं खा लेता हूं यदि भक्ति से कोई अर्पित किए तो। तो भगवान यहां पे भक्ति की महत्ता बता रहे हैं कि भक्ति भाव से यदि भगवान को, जैसे विदुराणी महात्मा विदुर की पत्नी जब भगवान उनके घर आ गए अकस्मात, तो समझ में नहीं आया कि अब भगवान आ गए तो भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए, कि घर में केवल कुछ केले थे तो केले ले आई हो, और केलों को छीलने लगी और केला फेंक कर छिलका भगवान को देने लगी, और भगवान उस छिलके को खा रहे। और विदुर ने जब देखा तो विदुर भाग कर आए, रोके कि ये क्या कर रही हो तुम। तो फिर भगवान ने खाना रोक दिया, क्योंकि भगवान कहे कि तुम्हारी पत्नी विदुराणी वो इतने प्रेम से मुझे अर्पित कर रही थी, तो आज तक मुझे केले में इतना आस्वादन नहीं हुआ जितना आज मुझे हो रहा था जब मैं केले का छिलका खा रहा था। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान एक तुच्छ ऑफरिंग से संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मांड पुराण में कथा है एक व्यक्ति की, ये व्यक्ति वो परस्त्री गमन किया करता था। उसकी शादी हुई थी परंतु रोज वो किसी दूसरी स्त्री से मिलने जाया करता था। तो रोज उसे एक नदी पार कर जाना होता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक गुलाब का पुष्प ले जा रहा था अपनी प्रियतमा के लिए। तो नदी से जब गुजर रहा था तो नदी का जो बहाव है वो बढ़ने लगा बारिश के कारण, और इतना बढ़ गया कि अब वो डूबने वाला था उसके अंदर, और उसे तैरना वैरना कुछ नहीं आता था। तो अब उसने सोचा कि यहां से बाहर निकला तो असंभव है, मैं उससे मिल तो नहीं पाऊंगा, ये पुष्प क्या दे पाऊंगा उसे। तो सुना था बचपन में कि भगवान को पुष्प अर्पित करना चाहिए, भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। तो चलो मरते मरते ये भगवान कृष्ण को अर्पित कर दूं मैं ये पुष्प। तो अब वो डूबने ही जा रहा था तो उसने वो पुष्प को हवा में फेंकते हुए कहा, एतत् पुष्पम ओम गोविंदाय अर्पणम अस्तु, कि ये पुष्प श्री गोविंद भगवान को अर्पित हो। और ऐसा वो अर्पित करते हुए, ये जप करते हुए वो मर गया। तो जैसे ही अब वो मरा तो यमदूत और विष्णुदूत दोनों आ गए। तो विष्णुदूत ने तो सोचा कि ठीक है, इसने केवल एक बार जप किया था। तो यमदूत वहां पर पूछते हैं कि भाई इसने तो पूरे जीवन भर पाप किया है, पर स्त्री गमन इतना किया है, तो इसे नरक में ले जाना होगा। तो जब विष्णुदूत ने कहा कि नहीं भाई, अंत समय तो इसने भगवान श्री गोविंद का नाम लिया, और केवल नाम ही लिया, एक पुष्प अर्पित किया, तो उसके लिए तो इसे कोई भेंट या उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो दोनों अब कैलकुलेट करने लगे कि इसको कितना इसके लिए मिलना चाहिए और कितना इसे नरक में समय भुगतना चाहिए। तो निर्णय यह हुआ कि इस व्यक्ति को केवल कुछ आधे मिनट के लिए वैकुंठ के द्वार तक ले जाया जाएगा, और वैकुंठ के द्वार का दर्शन मिलेगा, क्योंकि अंत समय में इसने भगवान श्री गोविंद का नाम लिया था, और बाकी पूरा समय नरक में, और केवल नरक के द्वार में नहीं, नरक के द्वार के अंदर। तो अब ये डिसीजन हुआ, तब पूछा गया इसे कि कौन सा पहले चाहिए, पहले नरक का दर्शन करना है या फिर वैकुंठ द्वार का दर्शन करना है। तो उसने कहा कि भाई वैकुंठ द्वार का दर्शन एक बार कर लेते हैं, और वो जो स्मरण रहेगा उसमें दंड भी भुगतते रहेंगे। तो तुरंत तीन यमदूत ले गए और वहां पर खड़े थे, घड़ी देख रहे थे, आधा मिनट केवल, आधा मिनट और तुरंत फिर नरक में ले जाना है इसे। तो वो सामने खड़ा था वैकुंठ द्वार के और द्वारपाल थे वहां पर, और वैकुंठ के द्वार के सामने बहुत बड़ा एक बगीचा था जिसमें बहुत से गुलाब के पुष्प खिले हुए थे। तो अब ये आधे मिनट के लिए वहां पर खड़ा है, तो कुछ सेकंड ही बीते थे, खड़े खड़े वो सोच रहा था कि मैंने एक गुलाब अर्पित किया था जिसके वजह से मुझे वैकुंठ द्वार का दर्शन मिल रहा है, और यहां पर कितने सारे गुलाब हैं। अब समय जा रहा था, आधा मिनट खत्म होने ही वाला था, तो एक कूद पड़ा और वो जो द्वारपाल थे उनके एक तलवार लिया और वो तलवार से उसने बहुत से गुलाब को एक ही ब्लो में काट दिया और काटते हुए कहा, एतत् पुष्पाणि ओम कृष्णाय अर्पणमस्तु। अब वहां पर यमदूत बहुचके खड़े देखे और विष्णुदूत तुरंत आ गए कि भाई उसने उस समय तो केवल एक गुलाब अर्पित किया था और उसका परिणाम क्या था कि वैकुंठ द्वार का दर्शन। अब यहां पर इसने कितने सारे गुलाब एक साथ अर्पित कर दिए, चलो अंदर ले लो इसको। अब वो गए, लेकिन वो सबको काउंट करेंगे हम, कितना गुलाब इसने अर्पित किया, अब उसके अनुसार आधा आधा मिनट आधा आधा मिनट इसको मिला जाएगा। तो सब यमदूत वहां पर खड़े रहकर वो काउंट कर रहे थे कि इसने 10 गुलाब अर्पित किए। तो 10 गुलाब का कितना मिनट हो गया? 5 मिनट। 5 मिनट केवल अंदर, तो 5 मिनट के लिए उसको अंदर छोड़ा गया। वो 5 मिनट में वैकुंठ द्वार के अंदर जितने गुलाब थे अंदर के बगीचे में, वो एक एक कर सारे गुलाब तोड़ तोड़ कर ओम कृष्णाय अर्पणमस्तु, गोविंदाय अर्पणमस्तु, केशवाय अर्पणमस्तु। तो विष्णु दूत ने यमदूत को कहा, मेरे को लगता है आपको जाना चाहिए अब यहां से। क्योंकि ऐसे ऐसे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट करते करते ये हर क्षण यहां पर केवल ये सारे गुलाब अर्पित करता रहेगा, सबसे पहले तो सारे गुलाब खत्म हो जाएंगे यहां के और तुम्हारी ड्यूटी चलती रहेगी। तो और बहुत से लोग हैं कलयुग में और आपको बहुत बिजी रखे हैं वो लोग, तो जाकर उन पर ध्यान दो। तो यहां पर प्रशंसा की गई है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति ने मरते समय, जो पापी व्यक्ति था एक प्रकार का, मरते समय उसने केवल एक गुलाब का पुष्प अर्पित किया भगवान को, और वो भी कोई भगवान का अर्च विग्रह को नहीं, ऐसे ही उसने मरते समय हवा में फेंकते हुए कहा ओम गोविंदाय अर्पणमस्तु, और इस प्रकार कि उसकी सदगति हो गई। तो ये भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कि जब कोई व्यक्ति प्रेमा भक्ति से यदि मुझे पुष्प अर्पित करता है, जैसे आज हम भगवान को करने वाले हैं, केवल एक नहीं कितने सारे, तो जैसे भगवान को ये सब अर्पित होते रहेंगे तो आप लोग अपने मन में हरे कृष्ण जप करते हुए कह सकते हो, एतानि पुष्पाणि एतत् पुष्पम अर्पणमस्तु कृष्णाय अर्पणमस्तु गोविंदाय अर्पणमस्तु। और कहने का एकमात्र तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए, कई बार लोग कहते हैं आपको जो कुछ आध्यात्मिक पद्धति में करना होता है सब केवल हाथ ऊपर कर या आप हरे कृष्णा कह देते हो। चाहे किसी का जन्मदिन है या किसी का मरण दिन, जहां कहीं पर भी आप लोग जाते हो हरे कृष्णा, क्योंकि हरे कृष्णा में सब कुछ है। जो कुछ हमें अर्पित करना है सब कुछ हरे कृष्णा के अंदर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया है। महाभारत में द्रौपदी के विषय में कहा गया है, जैसे प्रभुपाद जी अक्सर द्रौपदी का उदाहरण दिया करते थे कि जब किस प्रकार से करना चाहिए हमें, जैसे द्रौपदी उस अवस्था में जब दुशासन चीरहरण कर रहा था, द्रौपदी ने किस प्रकार से अपने आप को सर्वस्व अर्पित किया भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर। तो एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ बैठे, पांडवों के लिए वो एक सेव छील रहे थे। क्या कहते हैं मराठी में, सफरचंद को छील रहे थे। तो चाकू से जब वो छील रहे थे तो उंगली का छोटा सा कोना कट गया भगवान का और वहां से रक्त बहने लगा। तो तुरंत द्रौपदी ने क्या किया, अपनी साड़ी का कोना फाड़ा और तुरंत वहां पर फर्स्ट एड पट्टी बांध दी। जैसे ही वो रक्त बह रहा था उसे रोकने के लिए द्रौपदी ने पट्टी बांध दी और तुरंत भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को कहते हैं कि ये जो तुमने मुझे अर्पित किया है तुम्हारे साड़ी का एक कपड़ा, तो इसे मैं ठीक प्रकार से इसका भरपाया करूंगा कुछ समय पश्चात। और उस समय द्रौपदी को कुछ समझ में नहीं आया, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण साड़ी के रूप में आए और द्रौपदी की रक्षा की, तब द्रौपदी ने याद किया कि मैंने केवल इतना सा अपनी साड़ी का टुकड़ा भगवान को अर्पित किया था। और भगवान देखे कितने कृपालु हैं कि भगवान स्वयं साड़ी के रूप में परिवर्तित होकर आ गए और मेरी रक्षा की है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसके अंदर कहा गया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की कोई तुच्छ भेंट भी हो उसे किस प्रकार से भगवान ग्रहण करते हैं। तो इस श्लोक में कहा गया है, गुरुर गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिष अनिमिषो स्वाद्री वचस पति उदार दी। इस सुंदर श्लोक में कहा गया है गुरुर गुरुतम धाम, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के केवल नाम है सहस्त्र नाम, तो इनमें भगवान का एक नाम है निमिष अनिमिष। बहुत सुंदर नाम है ये दो नाम भगवान के। निमिष किसे कहते हैं जानता है कोई व्यक्ति, निमिष किसे कहते हैं? जब पलकें बंद होती हैं, बहुत सी हो रही हैं, जब अनुभव किया है प्रवचनों में पलकें बंद होती हैं बीच बीच में, थोड़ा जप में प्रवचन में, तो जब पलक बंद होती है उसे कहते हैं निमिष। और जो व्यक्ति जिसकी पलक कभी बंद न हो उस व्यक्ति को अनिमिष कहा गया है। जैसे भगवान को इस विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक में दोनों कहा गया है कि वो भगवान जो कि निमिष भी हैं और अनिमिष भी हैं। तो कोई व्यक्ति कहेगा मैं भी वैसे ही हूं। कई बार जब प्रवचनों में जब मैं बैठता हूं तो मुझे निमिष कहा जाता है, परंतु जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता है तब मुझे अनिमिष कहा जाता है। बिना पलक झपके एक टक होकर मैं देखता रहता हूं, एक बॉल भी मिस नहीं की थी मैंने पिछले मैच में। कई लोग तो बंबई में इतना पागल हैं क्रिकेट के प्रति, एक व्यक्ति वो जब भी इंडिया खेलती थी तो वो पूरा वो हेलमेट ग्लव्स और क्रिकेट बैट और ये सब लेकर बैठता था देखने के लिए। तो उसको पूछा गया, भाई तुम टीवी के सामने ये सब सज धज के क्यों बैठे हो ये सब क्रिकेट का? तो कहता था कि अगर इंडिया हार रही है और मेरी जरूरत पड़ जाए तो पूरी तैयारी में होना चाहिए मुझे। परंतु भगवान को उस प्रकार से नहीं कहा गया है। तो बलदेव विद्याभूषण अपनी टीका में कहते हैं कि भगवान का ये जो नाम है निमिष और अनिमिष, वो क्यों दिया गया है भगवान को? कि जब भगवान के भक्त भगवान की भक्ति करते समय कुछ गलती कर बैठे तो भगवान अपनी पलक बंद कर लेते हैं, तब उन्हें निमिष कहा गया। और जब भगवान के भक्त थोड़ी बहुत भी भक्ति करते हैं भगवान के प्रति तो बिना पलक को झपके अनिमिष भगवान एकटक होकर उसकी भक्ति को देखते रहते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं। इसीलिए भगवान को निमिष और अनिमिष इस प्रकार से उल्लेख कर कहा गया है। अब इस भौतिक संसार में भी जो बॉस होता है कंपनी का, वो भी निमिष और अनिमिष का पालन करता है। जब आपने गलती की अनिमिष रूप से देख लिया, और जब ही आपने कोई अच्छा कार्य किया तो निमिष है, तब किसी ने आपको देखा नहीं, आंखें बंद रही। परंतु यहां पर भगवान को कहा गया है गुरु गुरुतम धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिष अनिमिष स्वाध्री वचस्पति उदारदि। ये भगवान का गुण है। तो आज के इस पावन अवसर पर भक्तों ने बहुत प्रयास किए हैं, सुबह से बहुत से भक्त लगे हुए थे ये सारी जो पंखुड़ियां पुष्प की निकालते हुए, और करीब 350 से 400 किलो फूल आज भगवान को अर्पित होने वाले हैं। इसीलिए हम आपसे विनंती करेंगे कि सबसे पहले तो आप अनिमिष रूप से दर्शन कीजिए भगवान के सुंदर महोत्सव का, और उसके पश्चात फिर जो होगा वो आप देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि आगे चलकर क्या होने वाला है जब भगवान का अभिषेक प्रारंभ होगा। तो जैसे वो कथा हमने सुनी कि एक व्यक्ति जिसने केवल अपने अंत समय में एक बार भगवान को पुष्प अर्पित किया उसने, और उसे इस प्रकार से सदगति प्राप्त हुई। तो देखिए उस समय उसे पता लगा एक एक क्षण का महत्व, जब उसे केवल आधे मिनट के लिए वैकुंठ द्वार के सामने खड़ा किया था तो एक एक क्षण का महत्व उसे पता लगा कि मैं यदि एक एक क्षण में एक एक पुष्प अर्पित करूं तो मैं कितना अपने आप को बचा लूंगा नरक में जाने से। तो उसी प्रकार से हमारे पास कितने क्षण हैं अभी, तो वो समय नहीं आना चाहिए हमारा भी कि जब हम एक एक क्षण गिन रहे हैं कि अरे मैं वो क्षण में यदि भगवान को एक पुष्प अर्पित कर देता तो आज यमदूतों का संग नहीं करना पड़ता। तो विलाप करने से अच्छा है कि अभी जो क्षण है हमारे इस मनुष्य जीवन में इतने सारे, और वो पता नहीं कमल दल जल जीवन टलमल, पता नहीं वो क्षण भी कब फिसल कर गिर जाएंगे। तो उससे पहले हम ये सारे क्षण जो भी उपलब्ध हैं हमारे मनुष्य जीवन में वो भगवान की सेवा में लगा दें, ताकि हम इस मनुष्य जीवन की सर्वोच्च